एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज ग्रंथसार में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं मुश्किल उपन्यास की।
हाँ, विलियम फॉकनर का एब्सलम एब्सलम।
बिल्कुल, फॉकनर जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, वो अमेरिकी दक्षिण की नब्ज पकड़ने वाले लेखक माने जाते हैं।
हाँ, उनकी वो काल्पनिक योकना पटुफा काउंटी जैसे उस पूरे इलाके का आईना हो, इतिहास, समाज,
नस्लीय तनाव, वहां के मिथक, सब कुछ।
और एब्सलम एब्सलम को तो कई लोग उनकी मतलब सबसे बड़ी रचना मानते हैं।
सही कहा, ये कहानी है जो दक्षिणी शानो शौकत के पीछे जो त्रासदियां छिपी हैं उन्हें खोलती है, परत दर परत,
खासकर गुलामी और नस्ल की जो विरासत है उसको।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस थोड़ी उलझी हुई कहानी के धागों को सुलझाएं, किरदारों को समझें,
और फॉकनर का जो लिखने का तरीका है वो भी तो अनोखा है, उस पे भी बात करें।
हाँ बिल्कुल, फॉकनर का अंदाज ही इसे खास बनाता है।
वो जो उनकी तकनीक है, चेतना प्रवाह, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस।
हाँ, मतलब किरदारों के मन में जो चल रहा है, सोच, यादें, भावनाएं, सब वैसे का वैसा बिना किसी तरतीब के।
बिल्कुल, जैसे असल में हमारे दिमाग में चलता है, उलझा हुआ सा, ताकि हम महसूस कर सकें कि अतीत कैसे आज पर हावी है,
जैसे सब कुछ अभी हो रहा हो।
हाँ, और उनकी भाषा में वो बाइबल के हवाले, एक अजीब सा माहौल,
सदन गॉथिक जिसे कहते हैं, पुरानी हवेलियां, दरे हुए राज।
हाँ, हिंसा का डर, जैसे सतपेन की हवेली, और कहानी भी सीधी नहीं चलती।
हाँ, टुकड़ों में सामने आती है, आधुनिकतावादी विखंडन, ये सब मिलकर पढ़ने का अनुभव काफी गहरा बना देते हैं,
चुनौतीपूर्ण भी।
और फॉकनर की वो एक लाइन, अतीत कभी मरता नहीं, ये तो अतीत भी नहीं है, ये तो जैसे इस उपन्यास की चाबी है।
बिल्कुल, पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द है कि गुजरा हुआ कल कैसे हमें पकड़े रहता है।
जब ये किताब आई थी 1936 में, तो लोगों को थोड़ी मुश्किल लगी थी, है ना?
हाँ, इसकी जटिलता की वजह से मिली जुली प्रतिक्रिया थी, लेकिन धीरे धीरे
इसकी अहमियत समझी गई, और आज तो ये अमेरिकी साहित्य के सबसे जरूरी उपन्यासों में से एक है,
योकना पटुफा सागा का एक बहुत अहम हिस्सा।
कहानी की शुरुआत भी थोड़ी नाटकीय है।
हाँ, 1909 में जेफरसन मिसिसिपी, एक बूढ़ी महिला है, अकेली रहती हैं, रोजा कोल्डफील्ड,
और वो हार्वर्ड में पढ़ने वाले एक नौजवान को बुलाती हैं, क्विंटन कॉम्पसन।
क्यों? एक कहानी सुनाने के लिए, सतपेन परिवार की कहानी, उनकी दुख भरी गाथा।
और यहीं हम मिलते हैं उपन्यास के केंद्र से,
थॉमस सतपेन। हाँ, एक गरीब श्वेत आदमी जिसके दिमाग में एक ही धुन है, एक परिकल्पना, एक डिजाइन,
मिसिसिपी में आकर एक आलीशान खानदान बनाना।
गृह युद्ध से पहले का दौर है वो।
इज्जत पाना, रुतबा हासिल करना, कोई उसकी तरफ उंगली न उठा सके। ये सिर्फ महत्वाकांक्षा नहीं है, ये जिद है, जैसे समाज में अपनी जगह बनाने की।
और इसी जिद में, इसी जुनून में उपन्यास का असली संघर्ष है।
सतनेन अपनी जड़ों से ऊपर उठना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है।
नैतिक मूल्यों को मतलब ताक पे रख देता है, हिंसा का सहारा लेता है।
सोचिए, वो अपनी पहली पत्नी और बच्चे को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है,
क्योंकि उसे पता चलता है कि उनमें अफ्रीकी खून है। ये कितना चौंकाने वाला है।
और यही एक फैसला उसके और उसकी आने वाली पीढ़ियों के विनाश का कारण बन जाता है।
ये दिखाता है कि सम्मान की भूख इंसान को कैसे अंधा कर सकती है।
थॉमस सतपेन का किरदार सच में बहुत पेचीदा है।
हाँ, एक तरफ तो वो अमेरिकी सपने जैसा लगता है, गरीबी से उठकर दौलत और शोहरत,
लेकिन दूसरी तरफ वो एक बेरहम योजनाकार है जो अपनी योजना के लिए इंसानी रिश्तों तक को कुचल देता है।
उसका बचपन वेस्ट वर्जीनिया में गरीबी में बीता, और वो एक घटना जब उसे एक अमीर बागान मालिक के दरवाजे से भगा दिया जाता है, वो अपमान उसके अंदर आग लगा देता है। जमीन, गुलाम, सामाजिक रुतबा, सब कुछ पाने की आग।
हाँ, और उसकी ये यात्रा गरीब लड़के से अमीर बागान मालिक बनने की, वो क्रूरता से भरी है, हिसाब किताब से।
वो अपनी परिकल्पना को, अपने उस ख्वाब को हर मानवीय एहसास से ऊपर रखता है।
हेती में अपनी पहली पत्नी और बेटे को छोड़ देना सिर्फ उनकी नस्लीय पहचान के कारण, ये उसकी इसी ठंडी सोच का सबूत है।
लेकिन इसमें कड़वी सच्चाई भी है, है ना?
बिल्कुल, विडंबना देखिए, इज्जत पाने की उसकी कोशिश उसे आखिरकार वैसा ही बना देती है
जैसा वो आदमी था जिसने कभी उसका अपमान किया था।
हाँ।
ये अमेरिकी सपने के उस स्याह पहलू को दिखाता है जो नस्लीय शोषण और ऊंच नीच पर बना था।
सतपेन का उठना और गिरना दोनों ही उस बिगड़ी हुई व्यवस्था का आईना है।
उसका सपना ही कह सकते हैं भ्रष्ट था, क्योंकि वह दूसरों के दमन पर आधारित था।
इस कहानी में किरदारों का एक पूरा जाल बुना है, हर कोई अपनी कहानी अपने बोझ के साथ।
सबसे पहले रोजा कोलफील्ड जो कहानी सुना रही है, पर क्या उसकी बात पर पूरा यकीन करें?
हाँ, वो सतपेन की साली थी, कुछ समय के लिए मंगेतर भी। उसके अंदर सालों का दुख है, गुस्सा है सतपेन के लिए।
वो उस जमाने की दक्षिणी औरत का प्रतीक भी है, पीड़ित भी और हालात से लड़ने वाली भी।
उसकी यादें उसके जख्मों से रंगी हुई हैं, है ना? तो कहानी में सच्चाई और कल्पना घुलमिल जाती हैं।
हाँ, ये देखना दिलचस्प है कि सदमा कैसे किसी की कहानी कहने के ढंग को बदल देता है।
फिर है क्वेंटिन कॉम्सन, हार्वर्ड का वो छात्र जो रोजा की कहानी सुनता है और फिर सतपेन की गाथा के जुनून में जैसे खोसा जाता है।
वो उस पीढ़ी का प्रतीक है जिस पर इतिहास का बोझ है, अपने पुरखों के कर्मों का।
वो सिर्फ सुनता नहीं, बाद में अपने रूममेट शेव के साथ मिलकर कहानी के टुकड़ों को जोड़ता है, उसे फिर से गढ़ता है।
क्वेंटिन उस दक्षिणी नौजवान की कश्मकश दिखाता है जो अपनी जमीन से प्यार भी करता है और उसके भयानक अतीत को जानकर परेशान भी है।
और चार्ल्स बॉर्न, शायद कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी।
हाँ, वो सतपेन का वही बेटा है जिसे उसने त्याग दिया था क्योंकि उसकी माँ में अफ्रीकी खून था।
बॉर्न उस दबे हुए अतीत का प्रतीक है जो बार बार लौट कर आता है।
उसका किरदार दिखाता है कि नस्ल के नाम पर इंसानियत को कैसे कैसे बांटा गया और उसकी क्या भारी कीमत चुकानी पड़ी।
एक रहस्यमयी अजनबी से, हेनरी सतपेन का जिगरी दोस्त, और फिर
एक जानलेवा खतरा। उसका सफर बताता है कि उस समाज में पहचान समाज तय करता था, आप नहीं।
हेनरी सतपेन, उसका किरदार सबसे ज्यादा बदलता है ना?
हाँ, अमीर बाप का लाडला बेटा जिसे सब कुछ विरासत में मिला है,
लेकिन वो अपने ही दोस्त का, जो असल में उसका सौतेला भाई है, उसका कातिल बन जाता है, भगोड़ा।
उसकी पूरी जिंदगी चार्ल्स बॉर्न के लिए उसके गहरे प्यार और दक्षिणी समाज के नस्ले कानूनों के बीच फंसी रहती है।
जब उसे बॉर्न की नस्लीय सच्चाई पता चलती है तो दोस्ती, प्यार सब नफरत में बदल जाता है।
ये दिखाता है कि समाज के नियम कितने कितने बेरहम हो सकते थे।
और जुडिथ सतपेन, सतपेन की बेटी, वो खामोशी से सब सहती है।
हाँ, इतनी त्रासदियों के बावजूद भी वो अपनी गरिमा बनाए रखती है। उसकी लड़ाई अंदरूनी है,
अपने आसपास की मर्दों वाली हिंसा और योजनाओं के बीच वो चुपचाप खड़ी रहती है।
चार्ल्स बॉर्न के बेटे की देखभाल करना, बॉर्न के खतों को संभालना और सच जानते हुए भी खामोश रहना, ये सब जैसे उसका शांत विरोध हो।
जैसा हमने पहले कहा, कहानी सीधी नहीं है।
हाँ, उपन्यास की बनावट घड़ी की तरह नहीं चलती, आगे पीछे कूदती है।
एक तय क्रम नहीं है कहानी, कई लोगों के नजरियों से, अधूरी यादों से, अफवाहों से धीरे धीरे खुलती है।
ये फॉकनर का खास तरीका है और ये उनके उसी विचार को पुख्ता करता है
कि अतीत कभी गुजरता नहीं, वो हमेशा साथ रहता है, टुकड़ों में याद आता है।
पाठक के लिए ये एक चुनौती भी है, खुद ही जासूस बनकर सुराग जोड़ने पड़ते हैं।
कहानी की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। रोजा कोल्डफील्ड हमें बताती है कि कैसे एक गृह युद्ध के दौरान सतपेन का घर बिखरा।
हाँ, वो चार्ल्स बॉर्न के रहस्यमयी आने का जिक्र करती है, हेनरी और बॉर्न की गहरी दोस्ती, फिर तनाव,
और आखिर में सतपेन 100 के गेट पर हेनरी के हाथों बॉर्न की हत्या। पर क्या उसकी कहानी पूरी है? शायद नहीं।
फिर कहानी पीछे जाती है सतपेन की शुरुआत की तरफ।
ये हिस्सा कई आवाजों से बनता है, क्विंटन के दादा मिस्टर कॉम्सन, गांव की अफवाहें, क्विंटन का अपना अंदाजा।
हाँ, पता चलता है कि सतपेन 1833 में जेफरसन कैसे आया, कुछ वहशी समझे जाने वाले गुलामों और एक फ्रांसीसी आर्किटेक्ट के साथ
कैसे उसने चालाकी से, शायद धोखे से, 100 वर्ग मील जमीन हड़पी, एलन कोल्डफील्ड से शादी करके समाज में जगह बनाई।
लेकिन इस कामयाबी के पीछे की हिंसा भी सामने आती है, गुलामों से क्रूर कुश्ती लड़ना,
हैती में अपने पहले परिवार को नस्ल के नाम पर छोड़ देना।
कहानी का दिल शायद हेनरी, जुडिथ और चार्ल्स बॉर्न के बीच के उन उलझे हुए रिश्तों में है।
बॉर्न की सगाई जुडिथ से हो जाती है, पर हेनरी से उसका रिश्ता अजीब तरह से गहरा रहता है।
और सतपेन इस शादी का विरोध करता है।
क्यों? पहले लगता है शायद वर्गभेद, लेकिन धीरे धीरे शक होता है कि वजह कुछ और है, कोई गहरा पारिवारिक नस्ली राज।
इसी विरोध के चलते हेनरी बाप से बगावत करता है बॉन के साथ गृह युद्ध में लड़ने चला जाता है।
दोस्ती, प्यार, वफादारी सब उलझ जाता है।
और फिर आता है वो चरमोत्कर्ष, जब सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं।
धीरे धीरे वो भयानक सच सामने आता है। चार्ल्स बॉन सतपेन का ही बेटा है, पहली शादी से।
यानी हेनरी और जुडिथ का सौतेला भाई।
लेकिन इससे भी बड़ा सच और विनाशकारी ये कि बॉन की माँ में अफ्रीकी खून था।
उस जमाने के दक्षिणी कानूनों के हिसाब से खून की एक बूंद भी इंसान को अश्वेत बना देती थी।
और यही वजह थी कि हेनरी ने बॉन को मार डाला।
उसने नस्लीय शुद्धता और खानदानी इज्जत को अपने जिगरी दोस्त और भाई के प्यार पर तरजीह दी।
यह समाज की क्रूरता का सबसे भयानक चेहरा है।
उपन्यास का आखिरी हिस्सा युद्ध के बाद की तबाही और विरासत को दिखाता है।
सतपिन हार नहीं मानता, वो अपना टूटा हुआ साम्राज्य फिर खड़ा करने की कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है।
हताशा में वो रोजा कोल्डफील्ड को शादी का प्रस्ताव देता है, जिसे रोजा ठुकरा देती है।
और आखिरकार उसकी मौत होती है वॉश जॉन्स के हाथों, एक गरीब श्वेत आदमी जिसे सतपिन ने बुरी तरह जलील किया था।
कहानी का अंत होता है, क्वेंटिन और रोजा सतपिन 100 के खंडहरों में जाते हैं, जहाँ उन्हें बूढ़ा बीमार हेनरी मिलता है मरने के लिए लौटा हुआ।
और फिर हार्वर्ड में क्वेंटिन अपने रूममेट श्रेव के सामने दर्द से चीख पड़ता है, मुझे दक्षिण से नफरत नहीं है, मुझे नहीं है, मुझे नहीं है।
वो चीख उसके अंदर का गहरा द्वंद्व दिखाती है।
ये उपन्यास कई गहरे सवाल उठाता है, लेकिन शायद सबसे बड़ा मुद्दा है नस्लीय सोच की तबाही।
फॉकनर दिखाते हैं कि कैसे नस्ल के आधार पर इंसानों को बांटने के ये नियम, खासकर वो वन ड्रॉप रूल,
सिर्फ लोगों को अलग नहीं करते बल्कि परिवारों को अंदर से तोड़ देते हैं, रिश्तों में जहर घोल देते हैं।
चार्ल्स बॉन की पूरी जिंदगी एक त्रासदी है, क्योंकि समाज की परिभाषाओं ने उसकी इंसानियत छीन ली, अपने पिता से पहचान पाने का हक छीन लिया।
और हेनरी का अपने प्यारे दोस्त बॉन के लिए प्यार का जानलेवा नफरत में बदल जाना,
ये इसी जहरीली विचारधारा का नतीजा है। ये दिखाता है कि नस्लवाद सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं, ये हमारे अंदर बैठकर हमारे सबसे गहरे रिश्तों को भी तबाह कर सकता है।
सोचना भी भयानक है।
और फिर वो फॉकनर का वाक्य, अतीत का बोझ, यहाँ वो पूरी तरह सच साबित होता है।
सतपन ने जो दशकों पहले किया उसका असर आज भी किरदारों की जिंदगी तय कर रहा है, उन्हें बर्बाद कर रहा है।
गुलामी और नस्लीय जुल्म की हिंसा वो सिर्फ इतिहास नहीं, वो पीढ़ियों तक रिश्तों में जहर की तरह फैलती है।
ऐसा लगता है जैसे सारे किरदार हिंसा और धोखे के एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं, जिससे निकलना नामुमकिन है।
फॉकनर यहाँ पुराने दक्षिण के मिथ को भी बड़ी बारीकी से बुनते और उधेड़ते हैं।
हाँ, एक तरफ सतपेन की कहानी में भव्यता लगती है, लेकिन साथ ही फॉकनर उस शानो शौकत के पीछे छिपी हिंसा, शोषण, नैतिक पतन को भी दिखाते हैं।
बागान व्यवस्था जो ऊपर से सुंदर दिखती थी, उसकी क्रूर सच्चाई सामने लाते हैं।
सतपेन की परिकल्पना, वो सपना, असल में उस दक्षिणी ऊंचे तबके के खोखलेपन का प्रतीक बन जाता है,
जो इज्जत और परंपरा की बातें करता था, लेकिन उसकी नींव गुलामों के शोषण और नस्ल के नाम पर इंसानियत के इनकार पर टिकी थी।
पहचान और मान्यता का सवाल भी बहुत अहम है।
हाँ, उपन्यास दिखाता है कि हमारी पहचान अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि समाज हमें कैसे देखता है, परिवार हमें अपनाता है या नहीं।
चार्ल्स बॉन क्या चाहता था? सिर्फ अपने पिता से एक इशारा, एक स्वीकृति कि हाँ तुम मौजूद हो।
ये दिखाता है कि सामाजिक व्यवस्थाएं कैसे तय करती हैं किसका कितना मोल है, कौन अपना है, कौन पराया,
और इन व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए हिंसा का इस्तेमाल।
हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, सतपेन की क्रूरता, हेनरी का बॉन को मारना, हिंसा उस दमनकारी सिस्टम को बनाए रखने का जरूरी हिस्सा लगता है।
और ये सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं है, मानसिक और भावनात्मक हिंसा भी है।
किसी को नकार देना, अपनाने से इनकार करना, समाज से बाहर कर देना, ये सब गहरे जख्म देते हैं।
आखिर में ये उपन्यास हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम सच को कितना जान सकते हैं।
इतने सारे कथावाचक, सबके अपने नजरिए, अधूरी जानकारी,
ये सब मिलकर एहसास दिलाते हैं कि पूरी सच्चाई शायद कभी पकड़ में नहीं आती।
पाठक के तौर पर हमें खुद टुकड़ों को जोड़कर मतलब निकालना पड़ता है, फिर भी कुछ न कुछ रहस्य बाकी रह जाता है।
ये शायद जिंदगी की सच्चाई भी है कि हम चीजों को हमेशा अपनी समझ और नजरिए से ही देखते हैं।
वाकई फॉकनर की कारीगरी कमाल की है।
उनकी कहानी कहने की ये उलझी हुई बनावट ही स्मृति, नजरिए और अतीत के बोझ जैसे विषयों को जिंदा कर देती है।
कहानी कई परतों में खुलती है। रोजा से क्विंटन तक, मिस्टर कॉम्सन से क्विंटन तक, फिर हार्वर्ड में क्विंटन और शिव के बीच।
हाँ, जैसे किसी पुरानी जगह की खुदाई कर रहे हो और हर परत से नए सुराग मिल रहे हो, नई व्याख्याएं।
और वो चेतना प्रवाह तकनीक, वो अतीत और वर्तमान, याद और हकीकत, सच और अंदाजे के बीच की लकीरों को और धुंधला कर देती है।
कभी कभी एक ही लंबे वाक्य में किरदार और जमाना बदल जाता है।
इससे उपन्यास में एक अजीब सी बेचैनी, एक जुनून सा महसूस होता है, जैसे सारी घटनाएं एक साथ दिमाग पर हावी हो रही हों।
लगता है जैसे हम किरदार के उलझे हुए मन में ही उतर गए हैं।
भाषा और अंदाज भी निराला है। फॉकनर बाइबल के शब्दों और भविष्यवाणियों जैसे लहजे का इस्तेमाल करते हैं।
सतपिन की तुलना कभी शैतान से, कभी बाइबल के पात्रों जैसे अब्राहम या डेविड से की जाती है।
उपन्यास का नाम ही एब्सलोम एब्सलोम राजा डेविड के उस विलाप से लिया गया है जो उसने अपने बागी बेटे एब्सलोम के लिए किया था।
ये भव्य भाषा कहानी को एक महाकाव्य जैसा वजन तो देती है, लेकिन साथ ही किरदारों के बड़े बड़े वहम और पतन की तरफ भी इशारा करती है।
प्रतीक भी बहुत मायने रखते हैं। सतपेन की हवेली, सतपेन्स मैंशन, उसके बड़े सपने और उसकी भयानक नाकामी का सबसे बड़ा प्रतीक है।
हवेली का बनना, उसकी शानो शौकत और फिर धीरे धीरे उसका खंडहर में बदलना, ये सब सतपेन के उठने और गिरने की कहानी कहता है।
ये उस नकली शान का प्रतीक है जिसे सतपेन बनाना चाहता था, और अंत में हवेली का जलमना।
क्या वो एक भ्रष्ट सपने के मिट जाने का संकेत है, या शायद एक तरह की शुद्धि?
फॉकनर जानकारी को एकदम से सामने नहीं रखते, वो विलंबित रहस्योद्घाटन का इस्तेमाल करते हैं, डिलेड रेवलेशन।
हाँ, जरूरी बातें जैसे चार्ल्स बॉन्ड का असली रिश्ता और नस्लीय पहचान बहुत धीरे धीरे खुलती हैं।
इससे तनाव बना रहता है, कहानी में मनोवैज्ञानिक गहराई आती है और एक अजीब सी विडंबना पैदा होती है।
पाठक को लगातार चौकन्ना रहकर पहेली के टुकड़े जोड़ने पड़ते हैं।
और कुछ बातें, कुछ तस्वीरें बार बार अलग अलग तरह से सामने आती हैं। पुनरावृत्ति और भिन्नता, रेपिटिशन एंड वेरिएशन।
हाँ, जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाई जा रही हो, या कोई दर्दनाक याद बार बार दिमाग में कौंध रही हो।
ये मुख्य विचारों को और पुख्ता करता है और कहानी की उस जुनूनी प्रकृति को उभारता है।
ये उपन्यास पढ़ने के बाद मन पर एक भारीपन छोड़ जाता है, एक गहरी उदासी, एक एहसास कि कुछ चीजें होनी तय थीं और इतिहास का बोझ कितना भारी होता है।
ये दिखाता है कि कैसे नफरत और नाइंसाफी हमारे सबसे करीबी रिश्तों को भी जहरीला बना सकते हैं। चार्ल्स बॉन की कहानी दिल तोड़ देती है।
हाँ, एक इंसान जिसे सिर्फ उसके खून की वजह से उसके अपने ही पिता और समाज ने ठुकरा दिया, ये सामाजिक नियमों की क्रूर कीमत है।
और ये हमें अपने इतिहास और विरासत में मिली जिम्मेदारियों का सामना करने की चुनौती देता है।
क्विंटन की छटपटाहट हमें दिखाती है कि कैसे गुजरे जमाने के जुल्म और पाप का बोझ आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ता है।
नहीं बनाते
किरदार एक ही वक्त में पीड़ित भी हैं और अपराधी भी। ये जिंदगी की उलझन को दिखाता है।
सबसे स्थायी असर शायद अमेरिकी समाज में हिंसा की जड़ों और गुलामी के उस पहले पाप का, राष्ट्रीय पहचान पर पड़ने वाले असर का है।
फॉगनर दिखाते हैं कि नस्लीय सोच कैसे सिर्फ अलग अलग नस्लों के बीच ही नहीं बल्कि परिवारों और समुदायों के अंदर भी दरारें डालती है।
सतपेन परिवार की तबाही एक तरह से अमेरिकी नस्लवाद के खुद को ही तबाह करने वाले स्वभाव का प्रतीक बन जाती है।
ये दिखाती है कि जुल्म करने वाली व्यवस्थाएं अंत में सबको चोट पहुंचाती हैं।
और साथ ही ये उपन्यास सच की खोज और कहानी पर भरोसा करने के बारे में भी गहरे सवाल छोड़ जाता है।
इतने अलग अलग नजरियों के बीच क्या पूरी सच्चाई जानना मुमकिन है? शायद नहीं।
पाठक मतलब निकालने की कोशिश तो करता है, पर हमेशा एक रहस्य बना रहता है।
और इन सब त्रासदियों के बीच इंसान की प्यार और पहचान की तलाश भी है।
चाहे वो सतपेन की इज्जत की जिद हो या बॉन की अपने पिता से पहचान की तड़प।
दुख इस बात का नहीं कि प्यार नहीं था, दुख उन सामाजिक ताकतों का है जो प्यार को या तो नामुमकिन बना देती हैं या फिर जानलेवा।
एब्सलोम एब्सलोम वाकई फॉकनर की एक बेहद शक्तिशाली रचना है जो अमेरिकी इतिहास और पहचान की गहराइयों में उतरती है, ऐसी पड़ताल जो झिझोड़ कर रख देती है।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास कैसे जिंदा रहता है और कैसे अतीत के अनसुलझे मुद्दे और पूर्वाग्रह आज भी जिंदगियों को तबाह कर सकते हैं।
और ये हमें चुनौती देती है कि हम अतीत की मुश्किल सच्चाइयों का सामना करें, क्योंकि फॉकनर के शब्दों में अतीत कभी अतीत होता ही नहीं।
ये संवाद यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।